जी बिस्मिल्लाह कीजिए जी। बात यह है कि जरा बारी बारी चलें, एक एक सवाल करके पूछें तो मुझे सहूलत रहेगी, आपको समझने में सहूलत रहेगी। जी, इंतबाइया का लफ्ज तबा से है, इंतबाइया को समझें, ये लफ्ज तबा छपा हुआ, यानी अल्लाह ने जो तस्वीरें सोची वो नक्श हो गईं, वो छप गईं। तो गोया क्या कहा कि इंतबाइया नक्श, ये सफा नंबर क्या है?
जी
देखें, यहाँ साफ लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, ये लोहे अव्वल या लोहे महफूज, ठीक है, यानी कि वो प्रोग्राम जो अल्लाह के जहन में है। ये लफ्ज लोहे महफूज से बड़ा कंफ्यूजन है, हम समझते हैं कोई तख्ती है, लौह तख्ती को कहते हैं, ठीक है, तख्ती का दूसरा नाम उर्दू में, फारसी में से तख्ती कहते हैं, अरबी में ये लौह कहलाता है, लेकिन असल मुराद क्या है? महफूज, हमने कहा कहीं महफूज जगह पे तिजोरी के अंदर बंद करके रखा हुआ, नहीं, ये हाफजे से है, हिफ्ज याद होना क्या है, महफूज हो जाना, यानी हाफजे में, अल्लाह के हाफजे में, अल्लाह की जहन में। देखे ना, आपका जहन जो है उसमें कितने खाने हैं, एक खाना याददाश्त का है, एक खाने में आप बात समझ रहे हैं, दूसरे खाने में आप फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये सही है गलत है वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, हमारे जहन के मुख्तलिफ खाने हैं, लेकिन फील तो नहीं होते, अलहदगी तो कोई नहीं दिखती। अब अल्लाह रब करीम के जहन में जो अल्लाह ने प्रोग्राम तश्कील दिया वो कहीं महफूज है, उस सता को लोहे महफूज कहते हैं, ठीक है,
बिल्कुल।
फरमा कह रहे हैं हजूर कलंदर बाब औलिया कि इंसान किसी गैर जानबदार जाविये से हकायक को समझने की कोशिश करे, गैर जानबदार जाविये से, यानी न्यूट्रल होकर। न्यूट्रलिटी क्या है? अदालत का तर्ज जहन, अदालत का तर्ज जहन क्या है कि वो मुद्दई और मुद्दाल है, यानी दो फरीक उसके सामने होते हैं, वो दोनों की बात, जज साहब जो हैं या जज साहिबा जो होती हैं, वो दोनों की बात सुनती हैं, लेकिन फैसला कानून के मुताबिक होता है, यानी कि जज का जहन न्यूट्रल क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके जहन में फरीक नहीं होता, उसके जहन में कानून होता है, और कानून क्या है, बड़े की मर्जी, यानी सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह। तो उसके जहन में, जब बंदे के जहन में ये बात आ जाती है कि मुझे अल्लाह के कानून पे चलना है, यानी अल्लाह की मर्जी पे चलना है, यानी अल्लाह की बात को समझ के चलना है, तो क्या फरमाया कि जब किसी गैर जानबदार जाविये से हकायक को, लफ्ज देखें, हकायक को, यानी जो हकीकत है उसको कानूनी तौर पे, यानी कि वो बड़े की नजर से देखता है कि वो क्या चाहता है, जब वो समझने की कोशिश करता है तो कानून लोहे महफूज के तहत, ये अल्लाह का कानून है, यानी ये भी लोहे महफूज के कवानीन में से कानून है, क्या कि इंसान शऊर, लाशऊर और तहते लाशऊर का इंतबाइया नक्श, यानी वहां पे वो अपने शऊर का या अपने लाशऊर का या अपने तहते लाशऊर का, ये तीन चीजें क्या हैं, रूहे हैवानी, रूहे इंसानी और रूहे आजम, ये तीन असल में क्या है, आपका जिस्मानी निजाम, आपका ज़हनी फिक्री निजाम और उससे ऊपर रूहानी निजाम। यानी इन तीनों दर्जों पे, जिस भी दर्जे पे वो गौर करता है, उसमें छपी हुई बात, यानी उसका असल मकसद, हकायक, हकीकत जो है उसके सामने खुलना शुरू हो जाती है। इंतबा, हजूर कलंदर बावलिया खुद कैस की शरह फरमा रहे हैं कि इंतबा यानी वो तबा शुदा छपा हुआ नक्श क्या है, इंतबा वो नक्श है जो बसूरत हुक्म, यानी बसूरत हुक्म और बशक्ल तिमसाल, यानी उसकी एक मिसाल बनती है, यानी उसका एक खाका बनता है, एक आउटलाइन बनती है, लेकिन वो आउटलाइन ऑर्डर का दर्जा रखती है, कमांड का दर्जा रखती है। जैसे फौजी को कहा जाए अटेंशन, तो क्या होता है, फौजी एकदम पांव उठा के एड़ी जोर से जमीन पे मार के सीधा तन के खड़ा हो जाता है। तो ये लफ्ज अटेंशन मैं और आप बोले तो कोई माने नहीं रखता, हम तवज्जो देने को अटेंशन कहते हैं, लेकिन फौज की जबान में यही लफ्ज जो है वो हुक्म का दर्जा रखता है। और उसकी शक्ल क्या बनती है, किस तरह अटेंशन खड़े होना है, यानी कि दोनों पैर जमा के एड़ियां साथ मिला के सीधा तन के गर्दन सर को सीधा रखना है, ये है तिमसाल। लफ्ज अटेंशन की एक तिमसाल मेरे और आपके जहन में क्या, कि मतवजो हो जाओ। हम बच्चों को जब क्लास में टीचर कहते हैं पे अटेंशन, तो वो एड़ियां तो नहीं मारते, सल्यूट तो नहीं करते, यानी दोनों हाथ साइडों पर रख के ठक करके तो यूं खड़े नहीं होते, बल्कि वहां पे वो अटेंशन का क्या मतलब लेते, तवज्जो देना। लेकिन फौज में यही लफ्ज पूरे वजूद के साथ क्या तमसील बनती है उसकी, तो ये समझ आ गया कि जो बसूरत हुक्म और बशक्ल तिमसाल लोहे महफूज, अब बता दिया ब्रैकेट में क्या, सतह कुलियात। कुलियात का मतलब है जितनी भी मखलूकात हैं इनका मजमुआ, ये शौरा के कलाम के मजमुए को कुलियात कहते हैं ना, कुलियात का मतलब टोटल, यानी जो सारा कुछ सब कुछ है उसी को सता कह, उसकी हर चीज कुलियात, यानी जमा कर दे सारी कायनात को एक जगह, तो उसकी सता जो है वो सतह कुलियात, जिसे असल में लोहे महफूज, यानी लोहे महफूज क्या हुई। अब ये बात समझ लीजिए कि ये हजूर कलंदर बावलिया तसव्वुफ की वो टर्मिनोलॉजी जिसको बड़ा पेचीदा बना दिया गया, क्योंकि ये इल्मे सीना था। इल्मे सीना क्या था, क्योंकि लोगों का था कि इस इल्म को छुपा के बयान करने, क्योंकि मुआशरती तौर पे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि अल्लाह की बात को समझा जाए। शैतान का इतना गलबा था कि वो अल्लाह की बात को समझने नहीं देता था, तो क्या किया अल्लाह वालों ने, अपनी टर्मिनोलॉजी याद करके अपने खास खास बंदों को समझाते थे कि भाई अल्लाह है, उसने एक प्रोग्राम सोचा हुआ है, हमें उस प्रोग्राम के मुताबिक चलना है, यही मैसेज था ना। लेकिन उसको बयान करने में, जैसे देखे ना, अब आप के मेरे सर में दर्द हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मिग्रेन है। हम कहते हैं मेरा सर दुख रहा है, आई एम फील हैविंग हेडेक, हेड एक, वो क्या कहता है, मिग्रेन। अब लफ्ज मिग्रेन का मतलब भी सर दुख नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर जो बोलता है तो हम कहते हैं पता नहीं ये कोई खास चीज है। तो इस तरह से अहले तसव्वुफ ने अपनी टर्मिनोलॉजी डेवलप कर ली थी। हजूर कलंदर बावलिया ने देखा कि लोग जो हैं बात समझने के बजाय टर्मिनोलॉजी में उलझे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस सारी टर्मिनोलॉजी को स्त्री कर दिया। जैसे अब आपने ये पैराग्राफ देखा, अब बजाहिर देखने में ये बड़ा पेचीदा लग रहा था, لیکن اب اس وضاحت کے بعد کہ بھی اللہ کے ذہن میں ایک پروگرام ہے, اس کے نقوش جو ہیں وہ انتباہیہ کہلاتے ہیں, جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو بتا دیا طریقہ کہ بھی غیر جانبدار ہو کر, یعنی حقائق کو معلوم کرنے کے جذبے سے, یعنی اللہ کے ذہن میں کیا ہے اس کو جاننے کے چکر میں پڑ جاؤ. اب میں سلیس اردو بول رہا ہوں تو یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو, لیکن جب وہی بات حضور قلندر بابا اولیاء اپنی اس کی ٹرمنالوجی کا استعمال کرتے, کہ اس کتاب کے آخر میں 200 صفحے کے بعد انہوں نے ٹرمنالوجی کو استعمال نہیں کیا. یہ ہمیں جو تصوف کی پیچیدہ ٹرمنالوجی ہے اس کا آسان مفہوم بتا رہے ہیں, یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ کیا فرمایا کہ وہ انتباہ وہ نقش ہے جو بصورت حکم اور بشکل تمثال لوہے محفوظ یعنی سطح کلیات پر کندہ ہے, یعنی کندہ ہے, اسے کارو کیا گیا, کارونگ کو کندہ کرنا کہتے ہیں نا, اور اسی کی تعمیل منوان اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہے. یعنی اللہ نے جو کچھ سوچا ہے ہونا تو وہی ہے.
بالکل.
انسان کو چونکہ ارادوں کا اختیار دیا, انسان اس کو ڈیلے کر سکتا ہے یا جلدی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یعنی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا, یہ اس کی چوائس ہے. آگے یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. تو یہ بات واضح ہو گئی آپ کو کہ انتباہیہ کسے کہتے ہیں؟
جی بالکل. تو نیکسٹ یہ کہ کیا یہ ذہن سے منتقل ہوتا ہے؟
اس اتنی وضاحت کے بعد بھی آپ پوچھیں تو کچھ عجیب لگ رہا ہے. دیکھیں آپ کا شعور اس طرف متوجہ ہوگا تو آپ اس نقش کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ مثال بچہ جو ہے وہ کوئی شرارت کرنے کے موڈ میں ہے, میری عرض سن لیں جی, دہر کا کیا مطلب ہے؟ دہر جو ہے یہ وقت کو کہا ہے, وہ وقت کی سطح جو اللہ کے ذہن میں. دیکھیں وقت کی چار سطح ہیں, وقت کی چار سطحیں ہیں. ایک ہے وہ وقت جو اللہ نے اپنا پروگرام سوچا, تو وہ سارا ایک سیکنڈ کا پروگرام ہے, ایک لمحہ, لیکن کس کا لمحہ؟ اللہ کا لمحہ. اسے دہر کہا ہے, جو کائنات میں وقت جاری ہے, جو کائناتی وقت ہے اس کو وقت کہا ہے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے لی ما اللہ وقتن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے کہ میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں. یعنی کائنات کا جو پروگرام ہے کائناتی سطح پہ, سارا میرا ذہن اللہ کے ساتھ ہے. پھر اس سے نیچے اثر ہے, اثر جو ہے یہ نو کا ٹائم ہے, مطلب کائنات میں انواع ہے نا, کرے بھی ایک نو ہے, بکری, شیر, چوہا, بلی, چیونٹی, شہد کی مکھی سے لے کے ہاتھی تک, یہ سب کیا ہیں؟ نوئیں ہیں. امرود ایک نو ہے, آم ایک نو ہے, ناریل ایک نو ہے, پھر آگے ان کے اندر کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیں. تو جو نو کا ٹائم ہے اس کو اثر کہا ہے اللہ نے, والا اثر, اللہ اثر کہہ رہا ہے, وقت نہیں کہہ رہا. پھر متان الہین, ہین کہتے ہیں فرد کا ٹائم, یعنی جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا, یہ ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے یہ اسے ہین کہا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ یہ ہین جو ہے یہ خلا ہے, اس کے اندر وہ جو اللہ کے ذہن کا پروگرام ہے اس کی اطلاعات آتی ہیں, وہ اطلاعات درجہ بدرجہ جب ایک خلا میں قید ہو جاتی ہیں تو وہ انسان بن جاتا ہے, یا بکری, یا چوہا, یا بلی بن جاتا ہے. یعنی کانسیپٹس ہے نا, تصورات کا فلو ہے. اب ایک نو جو ہے, اب ایک ہی ماں باپ کے چار بچے ہیں, ہر بچے کی مزاج میں, ساخت میں, شکل و صورت میں, فیچرز میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے.
यानी नौ तो एक ही है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की तखलीक में वैरायटी देखें कि किसी दो अफराद की उंगलियों के नक्शे जैसे नहीं है। और करें कि माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे उसी माँ के बच्चों का ब्लड ग्रुप आपस में नहीं मिलता, ना माँ से मिलता है ना आपस में मिलता है, हाँ या नहीं? यानी बात ये हो रही थी कि ये सारे का सारा निजाम जो है वो अल्लाह के जहन में महफूज एक प्रोग्राम के तहत चल रहा है। इंसान को चूंकि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इंसान उसमें से कितना अखज करके उस पर अमल करता है, कितने पे अमल नहीं करता, जितने पे अमल करता है वो उसका क्रेडिट बन जाता है, अमल नहीं करता तो कोई दूसरा आके कर देता है, होता तो है उस पे अमल तो होना तो है।
जी
ठीक हो गया
बिल्कुल
जी। जी जनाब
एक क्वेश्चन और है।
जी
अज़ल से अबद की दुनिया की सरगर्मियां कौन सी
है? मतलब ये कि आगाज से इख्तिताम तक। देखे ना, आपने सोचा कि मैं घर बनाऊं, अब घर बनाने का आपने सोचा तो ये घर का अज़ल कहलाया। अब उस घर की शुरुआत हुई ना कहां से, आपके जहन में ख्याल आया कि घर बनाना, फिर आपने उसकी डिटेल्स तय की, ठीक है, आपने उसकी डिटेल्स तय की, फिर नक्शा बना, फिर उसके बाद इंतजामात हुए, घर की शक्ल एक बन गई, ठीक है, बिल्कुल वैसी नहीं बनी जैसी आपने सोची थी, उसमें किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कहा रंग ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो, तो वो करते कराते फाइनली एक शक्ल बन गई। अब उसके बाद आप रहे, फिर आपकी औलाद रही, फिर उनकी औलाद रही, फिर एक वक्त आया कि 50 साल 100 साल बाद वो घर क्या हुआ, डिमोलिश कर दिया गया। हमारे बड़ों के घर हमारे सामने डिमोलिश हुए या नहीं हुए? तो वो घर जो है वो उसकी यानी इख्तिताम हो गया, यानी कि वो सोच अबद में चली गई। क्या हुआ, इसे कहते हैं अजल से अबद, किसी चीज की शुरुआत को अजल कहते हैं और किसी चीज के इख्तिताम को उसका अबद कहते हैं। ठीक हो गया
जी, ठीक है, शुक्रिया
जी। और कोई सवाल जी? साफ तो लिखा है कि माहौल की गिरफ्त, माहौल इर्द गिर्द जो कुछ है उसको हॉल। देखे ना अल्लाह ने क्या फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला हॉल, हॉल कहते हैं इर्द गिर्द के सारे सिनेरियो को, एटमॉस्फेयर को, एम्बियंस को, ये जो हमारे आप कमरे में बैठे तो कमरे का माहौल, यानी कमरे में आपके इर्द गिर्द जो कुछ है, आप बाहर सड़क पे जाते हैं तो कहते हैं वहां का माहौल ऐसा है, आप किसी बंदे के घर जाते हैं कहते हैं उनके घर का माहौल, माँ मैंने जो कुछ, हॉल मैंने इर्द गिर्द। अब देखें इत्तलात जो हैं वो चार किस्म की हैं, एक होती है अल्लाह की तरफ से जो इत्तला हमें मिलती है, वो हमारे मकसद हयात से जुड़ी होती है, और दूसरी किस्म की इत्तलात आती हैं हमें नफ्स की तरफ से, उनका ताल्लुक हमारे तकाजों से होता है। मसलन आपको प्यास, पानी का ख्याल आया यानी प्यास लगी है, यानी एक तकाजे की तकमील होनी चाहिए, आपको भूख लगी यानी कि खाना खाने का ख्याल आ रहा है। ये इस किस्म के जो तकाजों से रिलेटेड थॉट्स होते हैं ये हमारे नफ्स की तरफ से होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से होते हैं वो मकसद हयात से जुड़े होते हैं। अब तीसरी किस्म के इत्तलात हमें माहौल से आती हैं जो हमारी ख्वाहिशात से जुड़ी होती हैं, लोगों की ख्वाहिशात से जुड़ी होती हैं। माहौल में क्या है, है? ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह कहता है इर्द गिर्द कुछ नहीं है और ना ही कोई कुव्वत है, इल्ला सिवाय बिल्ला, जो साथ है अल्लाह के, यानी आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है ये इसलिए है कि अल्लाह चाहता है कि ऐसा हो, लिहाजा है। तो अब हमें जब ये तफरीक पता चल गई तो हमने क्या करना है, अपनी तवज्जो की सुई को आप किधर रखते हैं, जाहिर है आपको तीनों पे रखनी है बारी बारी, जब ख्याल आए अल्लाह की तरफ से, अल्लाह वाला ख्याल आए तो उस पर तवज्जो देनी है, उस पर अमल करना है, जब तकाजे की तकमील का ख्याल आएगा तो उसको पूरा करेंगे, तस्कीन मिलेगी तो आप मकसद को हासिल कर सकेंगे, मशीन चलेगी ना। मैं एक मिसाल देने की इजाजत चाहूंगा, देखे गाड़ी है ना, अब गाड़ी क्या है, खाली डब्बा है, उस डिब्बे के अंदर क्या है, एक मकसद है और कुछ तकाजे हैं। मकसद क्या है, पैसेंजर्स को या मुसाफरों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, हाँ या नहीं, क्यों जी? अब इस गाड़ी को क्या क्या चाहिए चलने के लिए, पेट्रोल चाहिए, पानी चाहिए
जी,
तेजाब चाहिए
जी,
ब्रेक ऑयल चाहिए, इंजन ऑयल चाहिए, हवा चाहिए टायरों में भी और कार्बोरेटर में भी। तो ये तकाजे पूरे करेगी गाड़ी तो उसके वो अपने मकसद को चल पा सकेगी ना, यानी मकसद पूरा कर सकेगी। अगर हम इस मिसाल पे ही गौर कर लें तो हमारे तकाजे किसकी तखलीक हैं, अल्लाह की, तो उनको पूरा किसने करना है, मैंने या अल्लाह ने? गाड़ी को पेट्रोल चाहिए तो गाड़ी में पेट्रोल आप डालते हैं या गाड़ी डालती है? इसी तरह अगर हम अपने आप को मखलूक मान लें तो क्या होगा, जाहिर है कि हम दरोबिस्त अपने खालिक की तरफ देखेंगे कि वो कब पेट्रोल डालता है और कब ब्रेक ऑयल चेंज करता है, ठीक है ना। ये जो है ना सारा निजाम अल्लाह की बात को समझना है। तो जब हम अपनी तवज्जो माहौल में जज़ब करने देते हैं, होने देते हैं, तो क्या होता है, हमारा ध्यान अल्लाह की बात से भी हट जाता है और अपनी बात से भी हट जाता है। इसलिए इसका तरीका बड़ा सिंपल है, क्या क्या आप अपनी इनर पे तवज्जो रखें, कैसे, अपने सांस पे तवज्जो दें। अब सांस कौन दिला रहा है आपको, आप खुद ले रहे हैं, रोक के दिखाइए। अगर आप सांस खुद नहीं ले रहे, आपको अल्लाह दिलवा रहा है, मसलन आपका दिल धड़क रहा है ना, जरा महसूस तो करें कौन धड़का रहा है, आप धड़का रहे हैं। तो अब माहौल से डिटैच होने के लिए इसी को इस्तगना कहा है, जब बंदा माहौल से खुद को डिटैच कर लेता है। देखिए माहौल से हटना नहीं है, अंदर से माहौल की तरफ तवज्जो कम करनी है। माहौल में क्या है, आपकी औलाद है या आपके अमवाल है, अल्लाह ने क्या कहा, इन दोनों को फितना कहा है। फितने का क्या मतलब है, ये आपकी तवज्जो जज़ब किए रखते हैं, ये जो हमारे अंदर सारी चिपक है, दौलत की हवस है, शोहरत की ख्वाहिश है, ये सब क्या है, माहौल। माहौल क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है हमारा ध्यान उधर है, नतीजा असली जहां ध्यान होना चाहिए उस तरफ नहीं है। आपको मालूम है इसको कुरान ने जुल्म करार दिया, हजरत आदम से क्या सहव हुआ, क्या गलती की उन्होंने, असल में बगावत की, क्या किया, अल्लाह ने मना किया था कि दरख्त की तरफ तवज्जो नहीं देना, क्या कहा है, हाजा ये दरख्त, गौर करें ये दरख्त का है, वो दरख्त नहीं का, यानी ये करीब की चीज है, करीब की चीज क्या है, ये माहौल ही तो है हमारा करीब की चीज, हमारा ध्यान इस पे है। आज एक नया जुमला सुन ले किसी ने एक मैसेज किया, उसके नतीजे में ये जुमला वारिद हुआ, क्या कि हम लोग माइक्रोस्कोप की तरह छोटी छोटी चीजें देखते हैं, माइक्रोस्कोप बड़ी चीज नहीं दिखा सकता, या हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, हम दूर की चीजें ही देखते रहते हैं, करीब की चीजें नहीं दिखती। अरे भाई, इन दोनों को मुनासिब इस्तेमाल करना सीखें। हमारे अंदर दोनों नसब हैं, माइक्रोस्कोप भी और टेलीस्कोप भी। माहौल में तवज्जो देंगे तो माहौल में जहन जज्ब होगा, हाँ या नहीं? और अगर आप अपना जहन अल्लाह की तरफ लगा लेंगे तो मैंने आपको कहा कि छोड़ दें बड़ी लंबी चौड़ी बातें, नहीं, सिर्फ अपने सांस पे तवज्जो दें और गौर करें कौन दिला रहा है, तो पूरा तो लें। जब अल्लाह सांस दिला रहा है तो पूरा तो लो भाई, पूरा इनहेल करो, पूरा एक्सहेल करो। इसके फायदे बड़े हैं। पहला फायदा यह है कि बंदा इमराज से महफूज रहता है, उसके आसाब तवाना हो जाते हैं, जिस्म में ऑक्सीजन की मकदारें पूरी होती हैं, तो दिमाग भी पूरा काम करता है। जब दिमाग पूरा काम करता है तो जहन की कारकर्दगी समझ आती है, जब जहन काम करने लगता है तो फिर रूह भी समझ आ जाती है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? माहौल से कैसे तवज्जो हटानी है, माहौल को तवज्जो नहीं देनी, अपने इनर पे रखें जी, अल्लाह की किसी बात पे, किसी आयत पे, किसी चीज पे तवज्जो दें, तवज्जो को वहां से हटा के जरा उधर तवज्जो दें। ठीक हो गया
सर? और ये था कि जी सर, और सर ये था कि इन हलाए ज़हनी का जो यहाँ पे मुराक़बा बताया गया है, वो तो जाहिर है मुशर्रत से पाक की निगरानी के बगैर की नहीं है।
जब इस किताब में लिख दिया गया तो अब आप ये बहाना ना करें ना जी।
अच्छा,
क्या अब देखें, जब आप सिलसिले में आ गए, आपको मुर्शिद करीम ने बैत कर लिया और ये छपी हुई तहरीर है, यानी इसकी गोया आम इजाजत है सबको, हाँ या नहीं? अब मुराकबा क्या है, साफ लिखा है, मसलन इंसान, मसलन मिसाल दी है। वैसे तो हमारे लिए असल मुराकबा तसव्वुर शेख का है, जब हम वो करते हैं तो ये किसी बाकी मुराकबे के करने की खास जरूरत नहीं रहती, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो ये जरूर करें भाई। एक इल्म है ना, एक इल्मी बात है। आप कहते हैं ये तसव्वुर करना चाहती हूँ, क्या जरा करें जो हदायत दी गई है, क्या कि मेरी जिंदगी के तमाम आसार फना हो चुके हैं। जिंदगी के आसार के हैं, आपका दिल धड़क रहा है वो बंद है, आप सांस लेते हैं वो नहीं ले रहे, ये तसव्वुर करना है। फिर क्या होगा, अब आप देखेंगे कि मेरा बॉडी जो है वो उसको नहलाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, मुझे मट्टी में दफनाया जा रहा है, ये सारा कुछ प्रोसेस आपके जहन में चलेगा कि नहीं? फिर कब्र में क्या होगा, जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गया, तो कौन देख रहा है? देख तो आप रहे हैं, तो गल सड़ कौन रहा है? आपका ये मादी जिस्म, जिसका दिल धड़कना बंद हुआ तो लिहाजा सब कुछ रॉट होना शुरू हो गया, गलना सड़ना शुरू हो गया, तो फिर आपको एहसास होगा मैं कहाँ हूं। तो क्या कहा अगला, और अब मैं एक नुक्ता रोशनी की सूरत में मौजूद हूं। ये है हमारी औकात, कि हम रोशनी का एक नुक्ता हैं। बताएं इसमें क्या, जब आप ये करेंगे तो आपको कितनी चीजों का इदराक हासिल होगा, आपको महसूस होगा कि भाई हर चीज यहां पे मादी जोन में फना पजीर है, मैंने भी फना हो जाना है, तो क्या होगा आपके बिहेवियर में कितनी तब्दीलियां आएंगी, आप किसी चीज को अहमियत देंगे। आप उसको अहमियत देंगे जिसने बाकी रहना है। बाकी किसने रहना है? आपने। किस फॉर्म में? आप एक नुक्ता रोशनी की सूरत बाकी रहेंगे। साफ लिखा है या नहीं?
जी सर।
यानी आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि अब मैं अपनी जात की दुनिया से बिल्कुल आजाद हूं। ये तसव्वुर करना है कि जात की जितने मुझे जकड़बंदियां हैं उन सब से मुझे आजादी मिल गई। सारे रिश्ते नाते सब सिर्फ उस दुनिया से मेरा ताल्लुक बाकी है जिसके अहाते में, यानी कि आप अल्लाह के जहन में वापस चले गए, क्योंकि वहां आपकी शुरुआत से लेके आपके अंजाम तक सारी बात वहां मौजूद है या नहीं? अजल से अब तक की तमाम सरगर्मियां मौजूद हैं। जब आप खुद वहां होंगे तो तमाम सरगर्मियों को देखने की अल्लाह अहलियत भी अता कर सकता है, दिखा भी सकता है। ठीक हो गया? फिर क्या कहा? चुनाचे कोई इंसान जितनी मश्क करता है उतनी ही लोहे महफूज की इंतबाईयत उसके जहन पर मुनकशिफ होती जाती है, यानी जो कुछ लोहे महफूज पर छपा हुआ है वो उसको समझ आना शुरू हो जाता है रफ्ता रफ्ता, एकदम नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस करने लगता है कि गैब के नकूश इस तरह वाक्य हैं और इन नकूश का मफहूम उसके शऊर में मुंतकिल होने लगता है। यानी वो नक्श देखता है उसे नहीं समझ आती क्या है, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो यूज टू हो जाता है, उसे समझ आने लगती है कि भाई ये क्या है। अब बच्चा पहली दफा जब किचन में जाता है तो वहां उसे पता ही नहीं आटा क्या है, वो हाथ मारता है आटा गिरा रहा है तो माँ क्या चीखे मारती, नहीं बेटा इसे नहीं गिराते, हाँ या नहीं? इसी तरह गैब के नकूश से रफ्ता रफ्ता आदि होते चले जाते हैं, उनका मफहूम समझ में आने लगता है। असल बात क्या हुई? नकूश नहीं हुए, नकूश का मफहूम असल चीज है। और वो क्या होता है? वो शऊर में मुंतकिल होने लगते हैं, नहीं समझ तो वहीं आ जाती है, लेकिन जब तक वो फहम शऊर में मुंतकिल ना हो कोई फायदा नहीं। आपका लाशऊर तो सब कुछ जानता है, लेकिन जब वो शऊर में मुंतकिल हो, एक एक लफ्ज इसका अहम है इस किताब का। इन तबाइयत का मुतालिया करने के लिए सिर्फ चंद रोजा मुराकबा काफी है। साफ लिखा है या नहीं? चंद रोजा, ये चंद रोजा किसके लिए? क्योंकि जो जिसको लिखवा रहे थे उसको कहा उस वक्त। वैसे हकीकत है हर इंसान में ये, मतलब चंद रोज कितने होंगे भाई? कम से कम आप लगा लें 90 दिन लगा लें या 120 दिन लगा लें, 3-4 महीने ये करके देखें, ज़हन खुलेगा। लेकिन तसव्वुर शेख जो है ये आपको साथ साथ करना है, अलग से इसको अलग करना है और तसव्वुर शेख को जारी रखना है आखिरी दम तक। ये फर्क है, इसमें साफ लिखा है ये चंद रोजा मुराकबा करके देख लें, कोई हर्ज नहीं। ठीक हो गया?
ठीक हो गया सर।
जी शुक्रिया। और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम।
सर तसव्वुर शेख को भी एक मर्तबा और थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए।
ये दो लफ्जों को आप खुद डिफाइन करें। शेख किसे कहते हैं? लफ्जी मतलब है बड़ा, लफ्जी मतलब है बड़ा। शेख कहते हैं बड़े को, बुजुर्ग को। फारसी में बुजुर्ग कहते हैं, अरबी में शेख कहते हैं। तो जिसको आपने बड़ा मान लिया अब उसका तसव्वुर करना यानी उसको सोचना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब हम किसी बंदे को जो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बड़ा प्यारा लगता है, जब हम उसको सोचते हैं तो किसी से पूछते हैं कि भी इसकी वजाहत करो कि उसे मैं कैसे सोचूं? क्यों जी? यहाँ आके हमारी नहीं, यहाँ आके हमारी फहम की टांगे क्यों कपकपाने लगती हैं? कि पता नहीं कैसे करना है? अरे भाई, बड़ा सिंपल सी बात है, जिसको आप बड़ा मानते हैं उसको इंतहाई प्यार से मोहब्बत से सोचना है ना। सोचने का एक तरीका यह है कि मैं ये सोचूं इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे, वो ऐसे बैठे होंगे, ऐसे लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, यही होगा ना। दूसरी सूरत जो इसकी आला सूरत है वो ये कि मैं ये तसव्वुर करूं, क्योंकि मैं उन जैसा बनना चाहता हूं। मैं सिलसिले में क्यों आया? मैंने किसी को मुर्शद माना है कि मैं उसकी बात मानूं, वो कहता है कि मुझे इमेजिन करो। क्या कह रहा है? मेरे जैसे बन जाओ। यही कहा ना, मुझे इमेजिन करो का क्या मतलब हुआ? मेरे जैसे बनना है तो भाई क्या करेंगे? अब मैं अगर ये इमेजिन करूं कि मैं अब्बा हूं, मैं ये इमेजिन करूं कि मैं अब्बा हूं, तो क्या होगा? अब एक बच्चा बाप की नकल कर रहा है, क्या होगा? उसके अंदर बाप की तर्ज फिक्र मुंतकिल होगी या नहीं? अगर आप ये तसव्वुर करें कि आप खुद बनफ्स नफीस अब्बा हैं, और करें क्या कह रहा हूं, क्या होगा? आपके अंदर मुर्शिद की तरह बैठने का अंदाज आप कॉपी करेंगे ना, वो ऐसे बैठते हैं। तो क्या हुआ? आपका नुक्ता है जात जो है वो मुर्शिद में ढल गया। ये इसी किताब में आगे ये कानून पढ़ेंगे, जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो हमारा नुक्ता है जात उसमें तब्दील हो जाता है। तो जब हम मुर्शिद को सोचेंगे तो हमारा नुक्ता है जात जब उनमें ढलेगा, उनमें तब्दील होगा, या वो तब्दील होकर हमारे अंदर तब्दीली क्या आएगी, हमारे तर्ज फिक्र मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी मुर्शिद की, फिर उनका रफ्ता रफ्ता जहन मुंतकिल होगा, फिर उनकी सलाहियतें हमारे अंदर मुंतकिल होंगी, फिर उनका इल्म हमें मुंतकिल होगा। ये चार दर्जे हैं। लेकिन हम मुराकबा क्या करते हैं? मुर्शिद की तस्वीर सामने जहन में सजा के तो हिलना नहीं, मेरी टांग दुख रही है लेकिन मैं हिल नहीं सकती, क्यों? ओ भाई, बदल लो पहलू, क्या हो गया? सोते में तो आप करवटें लेते हो, नींद नहीं डिस्टर्ब होती, जब मुर्शिद को सोचने लगते हो तो पैर सुन हो गए। ये शिकायतें हम करते हैं या नहीं? तो जब अगर आपके दिल में सचमुच ये ख्वाहिश होगी कि मुझे अपने मुर्शिद जैसा बनना है, तो आप क्या करेंगे? उसका फार्मूला क्या बताया उन्होंने कि भाई मुझे सोचो, मेरा तसव्वुर करो यानी मेरे जैसे बनने की काबिश करो ना। बात कुछ वाजे हुई या नहीं? अल्लाह आपको हिम्मत दे, तौफीक दे कि आप ऐसे करें।
मैंने ये मुराकबे का अंदाज सेम किया, आपने कहा ना कि तसव्वुर शेख करें कि मैं खुद बाबा हूँ, तो जब से मैंने ये सोचना शुरू किया, मेरा मुराकबा करने का अंदाज चेंज हो गया। ना सिर्फ ये, मेरे जिंदगी का अंदाज भी बहुत हद तक
इंशाल्लाह बहुत बेहतर होता चला जाएगा। देखें, हजूर मुर्शिदे करीम पे अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, हाँ या नहीं?
जी बिल्कुल।
तो जब आप उनकी तरह जी अपने आप को उनके सांचे में ढालेंगे तो क्या आप पे नहीं बरसेंगी? भाई हम तो उनकी रूहानी औलाद है ना। देखें, कोई बच्चा अगर माँ बाप की नकल करता है तो वो बच्चा माँ बाप को ज्यादा प्यारा नहीं हो जाता?
बिल्कुल,
कानून है। अगर देखे ना किसी टीचर का कोई शागिर्द अपने टीचर को कॉपी करे तो टीचर को कितनी राहत मिलती है
जी।
कि भाई ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा है, हाँ या नहीं
जी।
मैं जो कुछ कहता हूं ये बात को समझता है और उसे उसी तरह करना चाहता है जिस तरह मैं चाहता हूं। एक दफा हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाया, कहने लगे मैं इन्हें कहता हूं कुछ करने को तो ये करते कुछ और हैं। जब मैं पूछता हूं कि ये क्यों किया तो आगे से मुझे जवाब देते हैं कि हम समझे थे कि आप ऐसा चाहते हैं। गौर करें जरा क्या गिला किया उन्होंने हैं? क्या वो कहते कुछ हैं और हम समझते हैं कि वो ये चाहते हैं, हम उनकी चाहत को नहीं समझे, हम अपनी चाहत को उनकी चाहत बना के तो आप उस पे अमल पैरा हो जाते हैं। अब मसलन ये मुराकबे का हाल देख लेना, उन्होंने कहा तसव्वुर शेख का मुराकबा करो
जी।
सारे बस क्या कहूं मैं, अब बुत बन के बैठे हुए कि पता नहीं ये क्या होता है जी। मैं तो 10 साल हो गए कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं आपने कितने दिन हुए ऐसा शुरू किए?
मुझे तकरीबन 1 माह हो गया।
अब 1 माह में आपने फर्क नोट किया?
25 साल हो गए मुझे इस सिलसिले में आए।
गौर करें 25 साल में नहीं फर्क पड़ा लेकिन 1 माह में फर्क महसूस होना शुरू हो गया। अब मुझे बताएं अगर आप इसे 25 साल से ऐसा ही कर रहे होते तो आज आप कहाँ होते?
नहीं,
उन्होंने तो साफ लिखा हुआ है किताब मुराकबा में, ये सारी बातें वाशगाफ लिखी हुई हैं। किताब मुराकबा में तसव्वुर शेख का चैप्टर जो है जरा उसे ध्यान से पढ़ लें, शिक नंबर 4 में ये सारा कुछ लिखा है
जी।
मेरे बयान में मेरे अल्फाज हैं
जी।
बात उन्होंने यही ना लिखी हो जो मर्जी कहिए।
नहीं वो तो आप सही फरमा रहे हैं, जैसे ये आपने कॉन्सेप्ट डाला कि आप सोचे कि आप ही बाबा हैं, बाबा जान हैं
जी। इससे हाँ पहला चीज क्या हुई कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो उसके साथ आपका ज़हनी इर्तबात, ज़हनी रब्त, ज़हनी ताल्लुक मजबूत हुआ या कमजोर हुआ?
स्ट्रांग हो गया
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कोई सवाल?
सर मैंने भी शुरू किया यही तसव्वुर शेख में ना 1 माह से कि मैं अब्बा हूँ तो जहन शुक्र अल्लाह का कि जहन काफी मेरा ना अब्बा की तरफ ध्यान चला जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हो गया। देखे मुझ पे ये मेरे लिए कितनी सआदत है, आपने बात सुनाई दिली राहत हुई खुशी हुई माशाल्लाह।
सही बात है, ये फील अंदर से फील होता है अब्बा के साथ जाते ना तालुक
है। आपको एक जोक सुनाऊं? मैंने एक साहब को कहा कि ये आप तसव्वुर क्या करें कि मैं अब्बा हूँ, तो उन्होंने आगे से किसी को बता रहे थे, कहते हैं मकसूद साहब कहते हैं कि तुम मेरा तसव्वुर क्या करो। मैंने इतना डांटा, मैंने कहा अब उसके बाद से मैं जुमला कहता हूँ तो कहता हूँ कि आप खुद बनफ्स नफीस अब्बा हैं। अब समझ आई? देखे ना मैं तो जुमला यही कह रहा हूँ ना कि आप ये सोचें कि मैं अब्बा हूँ, आप ये सोचें, यहाँ जुमला खत्म हो गया आगे इन्वर्टेड कॉमास में। हमारा जहन कैसे हमें बिगाड़, माहौल क्या करता है, असल बात को छुपाने के लिए बात को कितना डिस्टॉर्ट करके सुना उन्होंने। अब उसके नतीजे में मुझे क्या एहतियात शुरू कर रही, मैंने क्या एहतियात शुरू कर दी कि अब जब भी किसी को जुमला बोलता हूँ उसको कहता हूँ आपने ये तसव्वुर करना है कि आप खुद बनफ्स नफीस आप अब्बा हैं।
वापसी पर 10 साल हो गए मुझे, मगर अब रिकॉर्ड हुआ है कि वो 10 साल तो पिछले अस्सी गए।
नहीं, उसमें भी बहुत कुछ अंदर ही अंदर देखें, उन्होंने अंदर बहुत तब्दीली की है। जब आपका जहन इन बातों को एक्सेप्ट करने लग पड़ा तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ ठीक हो चुका है। अब सिर्फ वो गाड़ी पटरी पे चढ़ चुकी थी, उसको एक हल्का सा धक्का चाहिए था। इस पे एक और बात सुन लें। अभी ये जब मैं आखिरी बार ईद से पहले मिला था तो हजूर मुर्शिदे करीम ने मुझे फरमाया कि अब गुस्सा ना किया करें। तो मैं आगे से अर्ज किया, मैंने कहा कोशिश तो करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन शैतान पर मार जाता है। अब्बा ने नागवारी से सर को दाएं बाएं हिलाया, कहने लगे भाई उसे अपना काम करने दें, आपने अपना काम करना है, गौर करें। क्या देखें, हम इन बुनियादी बेसिक गलतियों से, खामियों से ही पाक नहीं हो पा रहे। देखें ना, मैंने आपको बताया कि हजूर मुर्शिदे करीम की ये जर्नल इंस्ट्रक्शन भी है हमारे सिलसिले के कवायद और जवाबित में, जाब्ता नंबर 22 क्या कह रहे हैं, गुस्सा नहीं करना। साफ कहा, इस दफा उनको जब सालगिरह की लोगों ने मुबारक दी तो क्या कहा कि भाई गुस्सा नहीं करना, क्योंकि हम लोग गुस्से से भरे हुए। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमें चीजें नागवार गुजरती हैं। नागवारी से क्या होता है? बेजारी पैदा होती है। बेजारी से क्या होता है? कोफ्त होती है। उससे क्या होता है? फिर किलकिल शुरू हो जाती है, फिर मुमारी शुरू हो जाती है, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। हजूर ने बड़ी शफकत से सिर्फ एक बात बताई, इससे बीपी हाई हो जाता है। अब अगर देखें कि हमारे मुआशरे में जिनको बीपी है उनको क्या करना है, गुस्से से बाज आना है। अब इस गुस्से से बाज आने में एक रम्ज बारीक बात और भी सुन लें। एक दफा मैंने अर्ज किया कि हजूर मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया, लेकिन घर का सारा निजाम, दफ्तर का सारा निजाम चौपट हो गया, क्योंकि सबको पता है कि भी अब ये गुस्सा नहीं करता, जो मर्जी करो। अब्बा ने मुझे इतनी तीखी और कड़ी नजर से देखा, कहा कि मैंने आपको गुस्सा करने से मना किया है, मैंने आपको डांट डपट से तो मना नहीं किया। यानी बारीक फर्क देखें, गुस्सा करना, हाँ देखें, एक है कि आप गुस्सा कर रहे हैं यानी कि आप उसकी लपेट में आ गए, आपका खून जल रहा है, आप उसके रिएक्शन में बोल रहे हैं। एक ये कि अगला गलती कर रहा है, आप बिल्कुल शांत हैं, आप उसकी गलती तोल के उसके मुताबिक उसे कहते हैं भाई ये क्यों किया, आइंदा नहीं करना। वो दोबारा दोहराता है तो आप जरा अपनी टोन को सख्त करके कहते हैं बेटे आपको एक दफा मना किया था, आपकी समझ में नहीं आया, अब दोबारा नहीं करना, क्या हुआ? ये है डांट डपट। बात समझ आ गई? यानी कि माँ बाप को चाहिए कि औलाद की तरबियत के लिए उनको पहले नरमी से समझाएं। अगर वो बाज ना आए, नरमी का नाजायज बच्चे जो होते हैं ये बहुत बड़े ब्लैकमेलर होते हैं माँ बाप को, सबसे बड़े ब्लैकमेलर से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। जी तो माँ होती है तो करते हैं ना। देखें माँ का कसूर यह कि वो अपनी मोहब्बत में उनके हाथों खेलना शुरू कर देती है, लिहाजा वो फायदा उठाते हैं। अगर माँ थोड़ी सख्ती कर दे ना तो बाप को सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और कोई सवाल? काफी हो गया? चलें फिर, रहती है बात, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह मियां आपके शौक को इस किताब के लिए आपकी जस्तजू को तलब को मजीद इस्तेहकाम अता करे, और जो बातें आप पढ़ रहे हैं आपकी फहम में आ रही हैं, अल्लाह मियां आपको इन पे अमल की तौफीक भी दे। ये माहौल से अगर आपने डिटैच होना सीख लिया तो इस्तगना तो आपको पहले 17 सफों में आ गया। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।